जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद धन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा अम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 गुसारे कृष्णा कृष्णा गुसारे हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय जय यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन యశోదానందన గజ నిరంజన యశోదానందన గజ యమునా తేరా వనచారీ యమునా తేరా వనచారీ తేరా వనచారీ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహార జయ రాధా గిరిధర రాధా గిరిధర రాధే జయ జగన్నాథ జయ జగన్నాథ బలదేవ జయ సుభద్ర జయ గౌరానిథాయ 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 జయ గౌరానిథాయ 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 జయ సచ్చినందన జయ సచ్చినందన జయ సచ్చినందన జయ సచ్చినందన జయ సచ్చినందన జయ సచ్చినందన జయ జయ సచ్చినందన గౌర హరి జయ ప్రభు జయ 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 ప్రభు 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 గౌ జయ ప్రభు పద జయ ప్రభు పద ప్రభు పద శుల ప్రభు పద నితాయ గౌర హరి ప్రేమానందే జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస బ్రహ్మచార్య అష్టౌత్తర సతీష్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచన అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ ఇస్కాన్ బిబిడి ఫౌండర్ ఆచార్య సేవియర్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ మోస్ట్ మర్సిఫుల్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస బ్రహ్మచార్య అష్టౌత్తర సతీష్ డివైన్ గ్రేస్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ తిరండి గోస్వామి మహారాజ్ కీ నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కే అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త వృందకి ప్రేమ్ సైకోజ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత్ గదాధర్ శివాచారి గౌర్భక్త వృందకి గౌర్భక్త వృందకి శ్రీ శ్రీ రాధా గిరిధారి గోపీనాథ్ శ్యామ కుండ రాధా కుండ గిరి గోవర్ధనకి గిరి గోవర్ధనకి శ్రీ శ్రీ రాధా గిరిధారీజీకే శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రామయ్యాకే శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయకి గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్భాగవతం మహాపురాణకి గౌర్ హరి ప్రేమానందే ఆల్ గ్లోరీస్ టు ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు గౌరాంగ్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్ సేవియర్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ ద మోస్ట్ మర్సిఫుల్ ఏసీ భక్తిదాన్ స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ గౌర్ హరి ప్రేమానందే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యాం నరాం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయామదీరే నష్టప్రాయేషు అబద్ధేషు नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नाइष्टके। हरे कृष्णा। आज का प्रातः हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 6 और श्लोक श्रृंखला 45 और 46 इन श्लोकों का पाठ करेंगे। शब्दों को कृपा करके आप सब मेरे बाद दोहराइए। सह बहुरिचा ताभि अपारान्या तपः श्रिया अनुग्रिहा परिचादेषु गृहेषु नाना उपवना अमल अम्बः सरहसु सुगंधिका काननेषु महारह सेया आसन वस्त्र भूषण स्नान अनुलेप अव्यवरह माल्यके शु अलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगायत द्विज भृंग वंदिषु। स बहिरिश्च तबिरापरण्या सबवरिच्छा तबिरापरण्या तपः श्रियान् तपश्रिय अनराग्य परिचादेषु तपः श्रिया अर्गया परिचादेषु गृहेषु नान उपवनमल अम्ब गृहेषु नानोपवनमल अम्ब सरसु सौगंधिक काननेषु सरसु सौगंधिक काननेषु सबहार इच्छा तबिरापरण्या तपः श्रियान् तपश्रिया नारग्य परिचादेषु ग्रहेषु नानापवना अमाल अम्बः सरसु सौगन्धिककाननेषु सबहरिचस्तवैरपरन्या तपः श्रियानार्गय परिचादेषु ग्रहेषु नानोपवनामाल अम्बः सारः सुसौगन्धिककाननेषु कोई बोलना नहीं चाहता छोटा है क्या ये दो श्लोक ने एक श्लोक लिखना चाहिए अगर तीन श्लोक साथ में है तो तीन श्लोक साथ में लिखेंगे दस श्लोक भी कभी कभी साथ में आ जाता है तो दस का दस बोर्ड में लिखा जाएगा एक श्लोक लिखना चाहिए तो एक श्लोक को पढ़ा जाएगा सरसु सौगन्धिककाननेषु एक श्लोक 45 कभी कभी तीन श्लोक साथ में आएगा कभी चार आएगा तो पांच आएगा कभी दस भी आ सकता है तो बोर्ड में एक लिखेंगे एक का हम लोग उच्चारण करेंगे और कोई बहुरिय वैष्णवीस स बहु स्वच्छा गृहेषु नानोपवनामम्बः सरसु सौगन्धिककः शब्दात् सः वशो बरीरिषि बहु ऋचः वैदिक मंत्रों का प्रयोग करने में पटु अपनी पत्नियों के साथ अपारनिया असीम तपह तपस्या का फल श्रिया ऐश्वर्य से अनर्ग्य भोग की सामग्री परिच्छेदेशु अभिन्न विभिन्न वस्त्रों से संचित ग्रहेशु घर में नाना तरह तरह के उपवन पार्क, हिंदी में भी इसको पार्क बोलते हैं, अमल स्वच्छ अम्बह जल। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गोनीथाय की, श्री श्री राधा गिरिधारी चंदन यात्रा महोत्सव की। सरहसु जिलों में सौगंधिक अत्यंत सुगंधित काननेशु बगीचों बगीचों में महा अरह। अगला श्लोक, अत्यंत कीमती साया बिस्तर आसन बैठने का स्थान वस्त्र वस्त्र भूषण गहने स्नान स्नानगर अनुलेप चंदन अभय वाहर व्यंजन माल एके तथा मालाओं से सुअलंकृत बलि भांति संचित स्त्रियां पुरुषेषु पुरुषों सहित नित्यदा निरंतर रेमे भोग किया अनुगायते गायन के साथ द्विज चिड़िया भृंग भोरे वंदिषु तथा बंदीजन पेशवर गाव्ये पेशवर गाने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सीफुल ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की। चूंकि शौबरी मुनि मंत्र उच्चारण करने में पटु थे, अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर वस्त्र गहने सुसज्जित दास तथा दासियां स्वच्छ जल वाली जिले उद्यानों से युक्त विविध पार्क उत्पन्न हो गए। उद्यानों में सुगंधित फूल चहकती चिड़ियाएं तथा गुनगुनाते भोरे थे और मुनि बंदीजनों से गिरे थे। शौबरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर आसन गहने स्नानघर और तरह तरह के चंदन लेप फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान के से घिरे हुए शौबरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। तात्पर्य, शौबरी ऋषि महान योगी थे। योग सिद्धियों से आठ प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, अनिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व तथा काम कामव सा इता। शौबरी मुनि ने अपने योग सिद्धियों के बल पर अतिश्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का
भोग किया। बहुरीच शब्द का अर्थ है मंत्र उच्चारण में पटु। जिस प्रकार सामान्य भौतिक साधनों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार मंत्रों के सूक्ष्म विधि से भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। शौभरी मुनि ने मंत्र उच्चार के बल पर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, किंतु यह जीवन की सिद्धि नहीं है। जैसा कि आगे देखा जाएगा, शौभरी मुनि भौतिक ऐश्वर्य से उब उठे और हर वस्तु त्याग कर वे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर जंगल में चले गए। जो लोग आत्म तत्ववित नहीं है, वे बाहरी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्ववित संतुष्ट नहीं होते। शौभरी मुनि के जीवन तथा कार्यों से हम यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अभिस्तम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथान्वितां ताम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनके परम अनुकंपा प्राप्त करते हुए आज हम उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भगवान उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नगमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए यहाँ पे जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी, जो कि अपने विशाल कमल नेत्रों से कृपा का दृष्टि बरसा रहे हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी उनके परिकर सहित के पाद कमलों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन इस धरातल पर पात्र अपात्र न देखते हुए बिखरा रहे हैं, ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने भक्ति रूपी गंगा का प्रवाह पुनः इस धरातल पर जागृत कराया है, ऐसे महान आचार्य के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, अन्य वैष्णव वैष्णवी जो डीटी किचन में भी इसका श्रवण कर रहे हैं, और जो भावी वैष्णव वैष्णवी इसका रिकॉर्डिंग वर्जन श्रवण करेंगे या इंटरनेट के द्वारा श्रवण करेंगे, उन सब के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए आज के इस सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर एक महान वंश का वर्णन किया जा रहा है, सूर्य वंश के महान राजाओं का। इक्ष्वाकु के बाद अनेक राजाओं का वर्णन हुआ, फिर राजा मांदाता का यहाँ सुंदर वर्णन आता है। राजा मांदाता का वर्णन करते हुए उनके राज्य में, उनके इस प्रजा में एक महान मुनि का वर्णन भी करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ये सूर्य वंश के महान राजा मानदाता का वर्णन करते हुए कुछ श्लोकों में सुंदर उनका वर्णन करते हैं। मानदाता एक ऐसे महान राजा हुए जो कि पूरे पृथ्वी पे अपना राज्य चलाए और इस प्रकार से उनका राज्य पूरे पृथ्वी में था, उनका प्रभाव पूरे पृथ्वी में था, पर वह वृंदावन से शासन करते थे। उनका जो राजधानी था वो वृंदावन मथुरा हुआ था और यमुना वहां से बहती थी। एक महान ऋषि तपस्वी शौबरी मुनि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शौबरी मुनि ऐसा प्रतापी तपस्वी, वे एक योग में स्थित ब्राह्मण थे। वह तपस्या इसलिए कर रहे थे जल के अंदर, जैसे वर्णन किया गया था, वे भावी वे पूर्व इतिहास को जानकर देखे कि बड़े बड़े योगी आए, पर ऐसे योगी जो हैं वे अन्य अप्सराओं के द्वारा वे विचलित हो जाते हैं। विश्वामित्र आए, खूब तपस्या किए, और विश्वामित्र आए खूब तपस्या किए तो स्वर्ग में इंद्र जी जो थे वो थोड़ा सा भयभीत हो गए। वो सोचने लगे ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कि ये तप बल से स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लेगा। तो पायल के जनकार से मनिका ने उनको बहका लिया। तो सोचा पृथ्वी में, पृथ्वी के ऊपर यह कर तपस्या किया और अप्सरा आकर नाच कर पायल के जनकार से का मन बहला दिया। अब मैं पृथ्वी में तपस्या नहीं करूंगा, मैं जल के अंदर जाके तपस्या करूंगा, अप्सराएं जल में नहीं आएगी। उनके पायल के जनकार अगर बजे भी तो पानी के प्रभाव से सुनाई नहीं पड़ेगी। तब तो किया उन्होंने खूब, पर यहां पे वर्णन आता है कि उन्होंने एक दिन दो मछलियों को साथ में देखकर उनका मन तुरंत विचलित हो गया। उनका मन विचलित होने का एक कारण बताया जाता है आचार्य गण द्वारा। कहते हैं कि सौबरे ऋषि वैसे तो अनेक सालों तक तपस्या किए, अनेक बार वो आंख खोले, अनेक बार मछलियों को देखे, पर इस बार क्यों मछलियों को देखकर उनका मन विचलित हो गया। तो ऐसा है कि यह सौबरी ऋषि जो है एक बार तप कर रहे थे तो अनेक मछलियां उनके पास आकर कहा कि हमें बचाइए, हमें बचाइए, ये जो पक्षी है बहुत भयावर है, वो हमें खाता है और चले जाता है। तब सौबरी ऋषि अपने तप से थोड़ा सा उठकर देखा तो देखा सच में एक पक्षी विशाल आया था और सब मछलियों को खा रहा था, हाथ से पकड़ रहा है, चोंच से पकड़ रहा है। तब देखा ये तो गरुड़ जी है, पर सौबरी ऋषि ने यह नहीं सोचा कि ये जो है गरुड़ वो पक्षी है, उनका आहार मछलियां हैं और ये प्रकृति का नियम है जी, एक जीव दूसरे जीव पर अपने जीवन चलाने के लिए वह उनका जीवन चलाने दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये ना सोचते हुए कि ये गरुड़ जी है, एक वैष्णव है, वो सब जानते हुए भी इन मछलियों के जो जो रोते हुए पुकारते उनसे प्रभावित होकर वे जाकर गरुड़ जी से कहा, अगली बार इस इलाके पे आप अगर दिखावे पड़ोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो गरुड़ जी को वो श्राप दिया, कहा कि यहां पे आप दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, धमकी दिया। और इस प्रकार से गरुड़ जी प्रणाम किए और चुपचाप चले गए। ये गरुड़ जी का विनम्रता थी, क्योंकि वो वैष्णव है, भगवान के वह सारथी है, तो वह इस बात को बहुत बुरा नहीं लिया। वैष्णव जो होते हैं किसी के मान अपना अपमान या श्राप से वह बहुत उत्तेजित नहीं होते हैं। वैष्णव जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना। वैष्णव जानते हैं कि हमारा जीवन इस शरीर में बहुत सीमित है, हमारे सांसें इस जीवन शरीर में बहुत सीमित है, हम बहुत समय के लिए इस शरीर में नहीं रहेंगे, हमें एक ऊंचा गंतव्य प्राप्त करना है, हमें कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, हर सांस में हमें भगवान का सेवा करना है, हर सांस में हमें भगवान का नाम लेना है, हर सांस में भगवान का स्मरण करना है। तो ये सब जानते हुए गरुड़ जी ने उनके इस प्रकार के वाणी को वह प्रतिक्रिया नहीं किए, समय ऐसा व्यर्थ नहीं गवाए, उसने ऐसा कहा तो मैं वैसा कहूंगा, नहीं, ये बातें वैष्णव के हृदय में कभी होते नहीं है। हम अमरीश महाराज के जीवन में भी यही शिक्षा लेते हैं। अमरीश महाराज क्या किए, वो देखिए कि जब दुर्वासा मुनि उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रहे हैं, वो राक्षसी को वहां पे प्रकट किया, वो नित्य करके उन्हें मारने भी आए तो भी वो क्या कर रहे थे, सवय मन कृष्ण पदारविंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। वैष्णव वो है जो जानता है जीवन का लक्ष्य क्या है, वह भगवान का भक्ति छोड़कर और कोई कार्य कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं करे, तो वो है वैष्णव। तब दुर्वासा मुनि वापस जब आए तब भी अम्बरीश महाराज ने यह नहीं कहा मेरे साथ आपने ऐसा किया बहुत अच्छा जैसे को तैसा, नहीं, वो भूल गए और उल्टा वो दुर्वासा मुनि से क्षमा याचना किए और दुर्वासा मुनि से कहा मुझे माफी, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे कारण आपको एक साल तक कष्ट अनुभव का। तब ये बात जो है दुर्वासा मुनि को मन को जीत लेता है और कहता है कि जो दुर्वासा मुनि उन्हें दुख देने के लिए एक साल पहले आया था, अब अम्बरीश महाराज के यह आचरण को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गया। कैसे वैष्णव कौन होते हैं, वैष्णव वो होते हैं जो उनको भी कष्ट देते हैं, उनके ऊपर उनको भी क्षमा कर देते हैं। तो ये भाव था ये गरुड़ जी के अंदर भी। गरुड़ जी ने उनका बुरा नहीं माना और चुपचाप उस क्षेत्र से गए। वैश्रे ये तो शौभ्र ऋषि हैं, उनके पास तप के द्वारा बल था, पर गरुड़ जो है भगवान का बहुत बड़ा सारथी है, पार्षद है, वो चाहे तो इस शौभ्र ऋषि को बहुत कुछ कहते थे और उसे नष्ट भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बोला चलो भूल जाओ इसे। और उस क्षेत्र में शौभ्र ऋषि का मान रखते हुए, एक ब्राह्मण का मान रखते हुए वो उस क्षेत्र में नहीं आया और इलाके में जाके वह मीन इत्यादि खाने लगे। अब ये जो कार्य शौभ्र ऋषि ने किया इसके चलते शौभ्र ऋषि का मन उनके वश में नहीं रहा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए मैं अपना मन को अपने बल से काबू में रखूंगा। ऐसा जो सोचता है वो गलत सोचता है, उनका गलती यह है कि यह मन मेरा जो है मेरे वश में मैं अपने बल से करूंगा। गलती क्या है, गलती उनका यह है क्योंकि यह मन मेरा नहीं है। लोग कहते हैं मन मेरा है, पर भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में, भूमि अपो अनलो वायु खम, ये पांच, ये स्थूल वस्तु और पांच सूक्ष्म पदार्थ जो है, और तीन सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार इति यम में बिन प्रकृति अस्तदा, ये मेरा बिन प्रकृति है। क्या क्या है? भूमि भगवान का है, पानी भगवान का है, अग्नि भगवान का है, वायु भगवान का है, आकाश भगवान का है, मन भी भगवान का है। ये मन हम समझते हैं कि ये मेरा है, ये मन मेरा नहीं है, ये मन भगवान का है। और ये मन जब, ये मन जो है हमारे वश में तब रहेगा जब ये मन जिसका है उसको अर्पण किया जाएगा। ये मन भगवान का है, और भगवान में जब मन को लगाएंगे तो ये मन वश में रहता है। लोग कहते हैं मेरा मन वश में नहीं है, ये गलती यह है कि ये मन आपका है नहीं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सिद्धांत गलत है, मेरा मन है ही नहीं। ये भगवान किसका, ये मन किसका है, ये मन किसका है? भूमि अपो नलो वायु खम, मन बुद्धि अहंकार, ये मन किसका है? कृष्ण का है। ये मन जब कृष्ण में लगेगा तो काबू में रहेगा। पर सौब्री ऋषि ने क्या किया, भगवान को जो प्रिय है, भगवान के भक्त, उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उन्होंने एक अपराध किया। इस कारण से क्या हुआ, उनका मन जो है, जो अब तक अनेक सालों से वश में था, अब वश में नहीं रहा, विचलित होने लगा और पूरी तरह से बेकाबू हो गया। यह शिक्षा हम सब साधकों के लिए या साधक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बड़े सावधान हो जाना चाहिए। जब हम साधन भक्ति के स्तर पर रहते हैं तब हमें, हमारे ऊपर थोड़ा भगवान और वैष्णव का कृपा रहता है, और उस कृपा से हमें साधन भक्ति के राग राग से भाव और प्रेम के स्तर पर जाना चाहिए। तो ये जब साधन की अवस्था में रहते हैं तभी हमें बहुत सावधान होना चाहिए। हम सावधान इस बात का रखना चाहिए कहीं हम अपराध ना करें। 10 प्रकार का नाम अपराध है, सेवा अपराध है, धाम अपराध है, फिर और वैष्णव अपराध भी है। अपराधों से बचना चाहिए। बताया जाता है कि लोग कभी कभी कहते हैं मैं जपा करता हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करते करते मेरा मन जप में नहीं लगता है। होता है ऐसा? सुना कभी ऐसा? मीरा रोड में भक्त लोग इन सब से परे हो गए हैं, उनका मन पूरी तरह से वश में है, क्योंकि सब साधन अवस्था से भाव और प्रेम के स्तर पर है। पर साधक भक्तों के लिए सुनने में आता है कि वो पूछते हैं कि मेरा मन कभी जप करते हुए वश में नहीं रहता है। पर उन साधक भक्तों का बारे में कहता हूँ, उनके संबोधित करते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, कहते हैं कि जब हम एक अपराध करते हैं, सेवा अपराध, नाम अपराध, जो भी अपराध करते हैं, तो हमारे इंद्रिय जो हैं, इंद्रिय क्या है, आंख कान नाक, वो विषय वस्तु के, इंद्रिय विषय वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है एक अपराध करते हैं तो, और 10 अपराध करते हैं तो मन जो है दायतो विषयां पुंसान, उस विषय के प्रति ध्यान करने लग जाता है, बहुत सुंदर रूप है, ऐसा करके उस 10 अपराध करने से। यहां पे कृष्ण है और कृष्ण कहते हैं मन मनाबो मत भक्तो, मुझ पे ध्यान करो। अम्बरीश महाराज का चरित्र हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कि सवाई मन कृष्ण पदारविंद। पर 10 अपराध करने से हम सुनते हैं ये करते हैं फिर भी धायतो विषयान पुंसा, यहाँ पे कहते हैं धायतो भगवान में ध्यान लगाओ, तो कहते हैं धायतो विषयान पुंसा, 10 अपराध करने से ऐसे मन उसमें, यहाँ पे जपा भी चलता है वो भी चलता है। 100 अपराध जब हो जाता है फिर हम कहते हैं मेरा मन जपा में नहीं लगता है, ऐसे करके जपमाला नीचे रखते, मेरा मन जपा करने में लगता नहीं, ऐसे रख देते हैं, तो यह अपराध है। तो सावधान होना चाहिए, खास करके नाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये सबसे सावधान रहें। और हजार अपराध जब करते हैं तो हम चार नियमों से एक नियम को तोड़ देते हैं, और 10,000 अपराध करते हैं तो जपमाला रख देते हैं, कंटी माला रख देते हैं, तिलक को पहुंच देते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये रहा आपका जपमाला कंटी माला और मैं चला, यानी कि पूरी तरह से वो भक्ति को छोड़ देता है। ये साधक भक्तों के लिए सावधान होने के लिए, किस प्रकार से एक अपराध करने से सौब्र ऋषि का मन पूरी तरह से विचलित हो गया, साधक भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ध्यान इस बात का रखे कि कहाँ अपराध ना करें। अगर यह अपराध की श्रृंखला बढ़ती जाए या एक महान वैष्णव के प्रति अपराध कर लेते, तुरंत मन जो है विचलित हो जाएगा और हम अपने भक्ति से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यह एक इस प्रकार से सौब्र ऋषि का यहाँ पे जीवन में ये देखा गया। और जैसे ही उनका मन विचलित हो गया, वैसे तो अनेक बार उन्होंने आंख को खोलकर बंद किया, पर इस बार आंख खोलने से मन विचलित हो गया, और तब उन्होंने क्या किया, योग का जो लक्ष्य है कि हृदय में चतुर्भुज नारायण जो शिर उदक का विष्णु है उनका दर्शन करें, शंख गदा पद्म चक्र धारण करते हुए कमल के ऊपर जो विष्णु पीताम्बर वस्त्र धारण करके खड़े रहते हैं, वो विष्णु का दर्शन हृदय में करना, उस बात को भूलकर वो तुरंत जल से निकले, मानदाता राजा के पास गए, उनके राजधानी में गए और कहा कि मैं अब आपके एक कन्या से विवाह करना चाहता हूं। देखिए किस प्रकार से जीवन का लक्ष्य को भूल गया, क्या करने आए थे और क्या हो गया। और आगे आज के श्लोक में कहते हैं, जब रानियों राजकुमारियों ने देखा, अरे इनका इनका तो केवल केवल चमड़ी है और ये चमड़ी जो है हड्डी से लगा हुआ है, ये भी ऐसा भी कोई व्यक्ति से कोई शादी करेगा, तो सब छुपने लगे। राजा मानदाता कहा कि हमारे राज्य में एक नियम ऐसा है कि राजकन्या जो है वह स्वयं अपने वर को चुनती है, अगर वह चुन लिया तो अच्छा है। तो थोड़ा कृपा था सौब्र मुनि के ऊपर, तो वो भगवान के कृपा से बुद्धि लगा, समझ गया मानदाता राजा यह कहना चाहता है कि आपका शरीर अब स्त्रियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तब कहा कि कोई बात नहीं, मैं अब आता हूं। ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने लगा, देखते ही देखते वो सबसे सुंदर व्यक्ति लगने लगे, इतना तेज लगने लग गया, इतना सुंदर लगने, तप के बल से। वो तप का जो लक्ष्य है शारीरिक सौंदर्य को प्रकट करने में किया, जैसे हिरण्यकशिपु तप किया तो उसके हड्डी, और ब्रह्मा जी ने जब जल छिड़का तो सबसे सुंदर व्यक्ति बन गए और प्रणाम किए। इसी प्रकार से सौब्र ऋषि बहुत सुंदर लगने लगे। तब राजकन्याएं जो हैं 50 के 50 वो देखते रह गए, और राजा मानदाता समझ गया और कहा कि ठीक है, अब पति का कर्तव्य है कि अपने पत्नी को अच्छे गहने, अच्छे कपड़े और अच्छे आहार दे, ये पति का कर्तव्य होता है। अनेक अनेक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में गृहस्थों के लिए वर्णन आते, खास करके जो पति हैं, पति धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पति का धर्म होता है कि वह पत्नी को इतना कम से कम दे कि वो और कहीं पे और किसी का के पास ना जाएं आहार के लिए या वस्त्र के लिए या इत्यादि के लिए, वो इतना संतुष्ट रहे। खास करके स्त्रियों को 3 चीज अच्छा लगती है, अच्छे कपड़े, गहने और आहार, ये 3 चीज अगर दें तो स्त्रियां खुश हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सौब्र ऋषि जान गया अब इनको और प्रसन्न करने के लिए अपने तप के बल से आज के श्लोक में जो कुछ भी लिखा है वो सब प्रकट कर लिए। क्या क्या है तो एक बार पढ़कर हम देखेंगे। सौब्र ऋषि क्या क्या प्रकट किए, चैप्टर 6 श्लोक नंबर, तो उन्होंने क्या क्या प्रकट किया, जब तप से परमात्मा का दर्शन करना चाहिए तो उसके द्वारा उन्होंने, क्योंकि शौबरे ऋचि मंत्र उच्चारण करने में पटु थे, अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली जिले, उद्यानों से युक्त विविध पार्क उत्पन्न हो गए। उद्यानों में सुगंधित फूल, चहकती चिड़ियां तथा गुनगुनाते भोरे थे और मुनि बंदीजनों से गिरे थे, यानी कि गाने वाले लोगों के साथ गहरे हुए थे। शौबरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नानगर और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। तो ये तीन और उससे भी ज्यादा अधिक बहुत कुछ दिया, फ्लैट इत्यादि, बंगला। और इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए शौबरी मुनि अपने अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए, यानी कि उनका मन ऐसे चक्कर में फंस गया अपराध के कारण कि कहां उनको ध्यान करना था भगवान का और कहां गृह कार्यों में फंस गया था। सब एक ही बात के लिए यहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तत्वविद जो होते हैं, आत्म तत्वविद जो होते हैं, वह इन सब चीजों से आकर्षित नहीं होते हैं। और जो लोग आत्म तत्वविद नहीं होते हैं, ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। जब जब श्रीमद् भागवतम में ऐसे ऐसे वर्णन आ जाता है, जो भक्त नहीं होते हैं वो इन श्री भागवतम को पढ़ते हैं तो इन बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वाह वाह, कितना अच्छा, कितना अच्छा। तो प्रभुपाद जी इसलिए लगते हैं इन सब चीजों से किसको अच्छा नहीं लगेगा। भौतिकवादी व्यक्ति यही सुनेगा कि शौबरी ऋषि के पास एक ऐसा बंगला था, इस बंगले के साथ बगीचा, बगीचा में स्विमिंग पूल में ये वो सब, टेनिस क्या बोलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फिर हॉर्स राइडिंग, फिर अप्सराएं, ये वो सब था, खाने पीने के आइटम। तो ये सब सुनेगा तो लोग बोलेंगे वाह, ये तो ऐसा अपार्टमेंट मुझे चाहिए। और यही एडवर्टाइजमेंट हर जगह पे आता है, हमारे इस सोसाइटी में आप आइए, इसका सदस्य बन जाइए, हमारे सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, पार्क है, आइए, तो जिम्नाशियम है और क्या क्या नहीं है। तो ये सब सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रलोभन से आत्म तत्वविद जो हैं वो लोग प्रभावित नहीं होते हैं, और जो आत्म तत्वविद नहीं होते हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। ये सब जो सुंदर सुंदर वस्तुएं यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जो भक्त हैं उनको प्रभावित नहीं करता है, और साधक भक्तों को बहुत सावधान होना चाहिए, इन बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है। ये सब क्या है, एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है हम सबको नरक लेके जाने का। एक छोटा सा चुटकुला कभी कभी भक्त लोग बताते हैं, एक व्यक्ति को नरक लेके गया था, एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया था, तब उनको एक एडवर्टाइजमेंट बताया था नरक का और स्वर्ग का। स्वर्ग का एडवर्टाइजमेंट बताया, वहां पे सब कुछ शांत है, सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई किसी को ऐसा कर नमस्कार करता है, दूसरा भी ऐसे नमस्कार करता है, फिर धीरे धीरे चलता है। फिर नरक का एडवर्टाइजमेंट दिया, वहां पे डिस्को, ये वो, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कार ऐसे जा रहा है, बहुत पिक्चर दिखाई जा रहा है, ये वो सब था, जैसे बंबई के बिलबोर्ड्स में सब दिखाई पड़ता है। तो वो फिर से स्वर्ग को देखा, फिर से नर्क को देखा, फिर से स्वर्ग, फिर से नर्क, ऐसा देख के बोला, यमराज ने कहा बोलो क्या चाहिए, स्वर्ग या नर्क? तो बोला ये स्वर्ग ठीक है, नर्क बहुत ठीक है, मुझे नर्क चाहिए। तो जैसे नर्क में गया तो उसको लेके गया तो उसका पिटाई चालू हुआ, था था था, बोला क्या है ये, और पिटाई हुआ। फिर बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, और पिटाई क्या? फिर बाद में चिल्लाने लगा, मेरे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया। बोला क्या धोखा हो गया, मुझे आपने बताया उसमें स्विमिंग पूल है और उसमें जिम्नाशियम है और उसमें फिल्म के थिएटर है, ये सब कहाँ है? तब यमराज ने कहा ये नर्क का एडवर्टाइजमेंट है, और ये जब जो स्वीकार करेगा उसको अगर ये सब नहीं बताएंगे कोई नर्क में नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में भक्त लोग इस छोटे से चुटकुला को ध्यान में रखते हैं, वो जब भी देखते हैं कि थिएटर में एक अच्छा फिल्म है, हीरो हीरोइन डांस कर रहा है, विलन को मार रहा है, तो बोलेगा ये नर्क का एक एडवर्टाइजमेंट, ये पिक्चर देखेंगे तो तुरंत नर्क जाएंगे। बड़े बड़े घर देखते हैं, सुंदर सुंदर कॉलोनी देखते हैं, उपवन देखते हैं, तो तुरंत वो ध्यान में रखते हुए चुटकुले को, ये सब एडवर्टाइजमेंट नर्क जाने का है, इसमें हम मन लगाएंगे तो तुरंत नर्क में जाएगा और पिटाई होगा। फिर हमें हमारे बातों को कोई सुनेंगे नहीं, हम कितना भी चलाएंगे, धोखा धोखा धोखा, एडवर्टाइजमेंट में कुछ बताया और मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई सुनेगा नहीं, पिटाई होगा। तो आत्म तत्वित जो है इस बात को भलीभांति जानते हैं। देखिए हम भक्त बन रहे हैं, भक्त को जीवन का लक्ष्य पता रहता है। एक घटना ये जो है रसिकानंद गोसाई के साथ हुआ था, जो श्यामानंद प्रभु के बहुत प्रिय शिष्य हुए। वो ऐसे महान भक्त हैं कि एक पागल हाथी को अपने वश में कर लिया, एक पागल हाथी सबको धराया था, पर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया तो पागल हाथी उनको प्रणाम किया, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप किया। एक दिन सुबह की बात है कि उस ग्राम के बंगाल के वासी सब लोग चिल्ला चिल्ला के आ रहे थे, कह रहे थे कि स्वामी जी, गुरु जी, महाराज, एक योगी है, वो लकड़ी पे बैठकर यहां से वहां हवा में उड़ रहा है, कभी पानी में चल रहा है, और अपने योग बल से, सिद्धि से, अनिमा लगिमा इत्यादि से, प्राप्ति से वो सोना इत्यादि लेके आ रहा है। तब रसिकानंद महाराज का ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, नहीं फिर भी सब लोग साधारण व्यक्ति इसी से आकर्षित होते हैं। बोला नहीं नहीं, आज पानी में चला, बोला ये महत्वपूर्ण बात नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो आज हवा में उड़ा, ये महत्वपूर्ण बात नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर एक दिन वो सुबह सुबह दातुन कर रहे थे और ऐसे भक्त लोग आए, बोला आज वो आग को पी रहा है, तो बोला ये महत्वपूर्ण बात नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर सबको वो कहा, सबको दिखाने के लिए, तब रसिकानंद महाराज जो है वो दातुन के जो नीम का जो दातुन है उसको जमीन में ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे पटका जमीन के ओर, सबके देखते देखते वो दातुन जो है जमीन को स्पर्श करने से पहले एकदम खड़ा हो गया 2 फीट की ऊंचाई पे, और जैसे कोई घोड़े पे बैठता है या बाइक में कोई बैठता है वैसे रसिकानंद महाराज वो दातुन के ऊपर बैठ गए, और वो दातुन के साथ साथ रसिकानंद महाराज जो है पूरे ग्राम में हवा में उड़ने लगे, जुम 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 घुम करके। फिर आधा घंटे के बाद सब लोग देख रहे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, सबके मन को जीत लिया। तब आके कहा, मैंने कहा फिर से दातुन करना, ये महत्वपूर्ण बात नहीं, ये महत्वपूर्ण भक्त के अंदर आटों के ये भौतिक सिद्धि रहते हैं, पर भक्त लोग इन सिद्धियों को महत्व नहीं देते, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य यह है कि हम इस शरीर में रहते हुए हर सांस में, हर पल पे भगवान का भक्ति करके भगवान का कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये छोटा मोटा खेल जो है थोड़ा सा तपस्या करके कोई भी प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है ये छोटा मोटा खेल करने के लिए नहीं, ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, और इसे छोड़कर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, तो यही लक्ष्य को पकड़ के हमें और मन को कहीं पे भी नहीं विचलित कराना चाहिए। हरे कृष्णा। एकाध प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।